ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬೇಹದ್ ಕಿ ವೈರಾಗ್ ವೃತ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಯೋಗ ತಪಸ್ಯಾ ಭಟ್ಟಿ ಮೇ ಮಧುಬನ್ ಕೆ ಇಸ್ ಪವಿತ್ರ ದಿವ್ಯ ಪಾವನ್ ಭೂಮಿ ಪರ್ ಸಾರೆ ತಪಸ್ವಿ ಭಾಯಿ ಬಹನೋ ಕಾ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಹೇ ಸ್ವಾಗತ್ ಹೇ ಸ್ವಾಗತ್ ಹೇ. ಆಜ್ ಹಮ್ ಸಭಿ ಭಾಯಿ ಬಹನೆ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಹೇ. ಆಜ್ ಕೆ ಇಸ್ ಭಟ್ಟಿ ಕಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಪ್ರವಚನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಹೋನೆ ಜಾ ರಹಾ ಹೇ ಔರ್ ವೋ ಭಿ ಐಸೆ ಏಕ್ ಅನುಭವೀ ದೀದಿ ಜಿ ಜಿನ್ಕೊ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಏಕ್ ವರದಾನ್ ದಿಯಾ ಹರ್ ಕಿ ಪೌಡಿ. ಲಗಭಗ 1960 ಸೆ ಆಪ್ ಆದರಣೀಯ ಶಿಲು ದೀದಿ ಜಿ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಆಯ್. 1969 ಸೆ ಆಪ್ನೆ ಅಪನಾ ಪೂರಾ ಜೀವನ್ ಸಮರ್ಪಿತ ಕರ್ ದಿಯಾ. ಆಪ್ ವೋ ಅಮೂಲ್ಯ ರತನ್ ಹೇ ಜಿನ್ಹೋನೆ ಸಾಕಾರ್ ಬಾಬಾ ಮಮ್ಮಾ ಸಾರಿ ದಾದಿಯೋ ಕಿ ಪಾಲನಾ ಲೀ ಹೇ. ದಾದಿ ಜಿ ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ನೈರೋಬಿ ಭೇಜಾ ಸೇವಾ ಕೆ ಲೀ ಔರ್ ಫಿರ್ ಕುಚ್ ಸಾಲ್ ಕೆ ಬಾದ್ ಆಪ್ ನೇಪಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯೆ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ 1976 ಸೆ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಸೆ ಆಪ್ ಮಧುಬನ್ ಮೇ ದಾದಿ ಜಿ ನೆ ಆಪ್ಕೋ ರಾಜಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಕಿ ಸೇವಾ ಕಿ ಜಿಮ್ಮೇವಾರಿ ಸೌಂಪ ದಿ. ಅಪ್ ಸೋಚ ಸಕ್ತೆ ಹೇ 1976 ಸೆ 2025 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60 ಸಾಲ ಸೆ ಬಾಬಾ ಕಾ ಯೆ ನೂರೆ ರತನ್ ಲಗಾತಾರ್ ರಾಜಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಔರ್ ಇಸ್ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಯೆ ವಿಶೇಷ ವೀಣಾ ಯೆ ಬಜಾತಾ ಆ ರಹಾ ಹೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ. ಔರ್ ಐಸಾ ಯೆ ಅಮೂಲ್ಯ ರತನ್ ಹೇ ಕಿ ಜೋ ರಾಜಯೋಗ ಶಿಬಿರ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಸೆ ಆಪ್ ಸಂಭಾಲ್ತೆ ಹೇ ಆಪ್ನೆ ಅಭಿ ತಕ್ ಆಪ್ಕೆ ಸೇವಾಯೇ ಅಗರ್ ಹಮ್ ದೇಖ್ತೆ 80 ದೇಶೋ ಮೇ ಆಪ್ನೆ ಸೇವಾಓಂ ಕೆ ಲಿಯೆ ವಿದೇಶ ಯಾತ್ರಾ ಕಿ ಹೇ. ಔರ್ ಜೋ ಭಿ ಯಹಾಂ ಆತೆ ಹೇ ಸಚ್ಮುಚ್ ಆಪ್ಕಿ ಸುಂದರ ವಾಣಿ ಮಧುರ ವಾಣಿ ನಿರ್ಮಲ ವಾಣಿ ಸೆ ಪ್ರಭಾವಿತ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೇ ಔರ್ ಜೈಸೆ ಸಚ್ಮುಚ್ ಗಂಗಾ ಜೀ ಮೇ ವೋ ಡುಬ್ಕಿ ಲಗಾತೆ ಹೇ. ಸಬ್ಸೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾತ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಿ ಸೇವಾ ಜೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಹುಯಿ ತೋ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಆದರಣೀಯ ದೀದಿ ಜೀ ಕೆ ಸಾರೆ ವೋ ಪ್ರವಚನ ಉಸ್ ಸಮಯ ಉಸ್ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಪರ್ ಚಲ್ ರಹೆ ಥೆ ಆಪ್ ಸೆ ಹಿ ಶುರುವಾತ್ ಹುಯಿ. ಹಮೇ ಯಾದ್ ಹೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಿ ಪಹಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಆದರಣೀಯ ಶೀಲು ದೀದಿ ಜೀ ಕಿ ಹಿ ಹೇ ಔರ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಸಮಯ ಆಪ್ ರಾಜ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಕೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮೇ ಹೆಡ್ ಹೇ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಂಗ್ ಇಸ್ಕೆ ವೈಸ್ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೇ ಔರ್ ಸಬ್ಸೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾತ್ ಆಜ್ ಹಮ್ ಜಹಾಂ ಬೈಠೆ ಹೇ ಜಿಸ್ ಪಾಂಡವ ಭವನ್ ಕಿ ಭಟ್ಟಿಯೋಂ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಭಿ ತರಸ್ತೆ ಹೇ ಇಸ್ ಪಾಂಡವ ಭವನ್ ಕಾ ಉತ್ತಮ ಸುಚಾರು ಔರ್ ಏಕ್ ಮಾ ಕಿ ತರ ಸಂಚಾಲನ್ ಆದರಣೀಯ ಶಶಿ ದೀದಿ ಜಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಆಪ್ ಸ್ವಯಂ ಕರ್ ರಹೆ ಹೋ. ಆದರಣೀಯ ಶಿಲು ದೀದಿ ಜಿ ಶಾಲೀನತಾ ನಮ್ರತಾ ಮಧುರತಾ ಸ್ನೇಹ ಔರ್ ಪವಿತ್ರತಾ ಕಿ ಮೂರ್ತ ಹೇ. ಐಸೆ ಆದರಣೀಯ ದೀದಿ ಜಿ ಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಹಮ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಔರ್ ದೀದಿ ಜಿ ಕೋ ನಮ್ರ ನಿವೇದನ್ ಕರ್ತೆ ಹೂ. ಆಜ್ ಕೆ ಭಟ್ಟಿ ಕಾ ಉದ್ದೇಶ ಔರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಪ್ ಹಮ್ ಸಭಿ ಕೋ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕರೆ. ಆದರಣೀಯ ದೀದಿ ಜಿ
ಮೈ ಚಾಹೂಂಗಿ ಕಿ ಆಪ್ ಭಿ ಅಪ್ನಾ ಪರಿಚಯ ದೇ. ಸರಿತಾ ಬಹನ್ ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ ಹೇ, ಆಪ್ ಖುದ್ ಹಿ ಅಪ್ನಾ ಪರಿಚಯ ದೇಂಗೇ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಗಲೆ ಚಾರ್ ದಿನ ರಹೇಂಗೇ ಔರ್ ಸಾರೇ ಇಸ್ ಪಠ್ಯ ಕಾ ಸಂಚಾಲನ್ ಕರೆಂಗೇ. अपना थोड़ा परिचय दें।
इस शरीर का नाम है सरिता बहन। लगभग 45 साल से बाबा के ज्ञान में है और समर्पित जीवन, और विशेष रूप से पुणे में बाबा ने मुकुंद नगर सेंटर संभालने की जिम्मेवारी दी है, और साथ साथ में विशेष रूप से कॉलेज के स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल डॉक्टर्स, इंडियन आर्मी और इसके साथ चिल्ड्रन, वुमेन्स, इन सब की सेवा करने के निमित्त बाबा ने बनाया। विशेष रूप से बाबा ने मेडिकल विंग की ओर से पुणे में 6 मेडिकल कॉन्फ्रेंस, हजार हजार डॉक्टर्स की करने के लिए बाबा ने सेवाधारी चुना, और उसके साथ साथ विशेष रूप से एक बहुत बाबा ने गॉडली गिफ्ट दी है, क्रिएटिविटी। तो डिफरेंट मेडिटेशन कमेंट्रीज और डिफरेंट योग के प्रयोग और लेक्चर्स, इसके बाबा ने विशेष एक गॉडली गिफ्ट दी है, और पूरा परिवार ज्ञान में है। अगर आप पहचानते होंगे तो ग्लोबल हॉस्पिटल में सुजाता बहन जो है तो लौकिक और अलौकिक ऐसे सिस्टर हैं, और आदरणीय दीदी जी के मार्गदर्शन में 35-40 साल पहले हम यहाँ राजयोग शिविर सीखने आए थे। दीदी जी के ऑफिस में आदरणीय दीदी जी हमारे गुरु है और माँ की तरह है। थैंक यू। ओम शांत।
ओम शांति। सर्वप्रथम प्यारे बाप दादा, मम्मा, सर्व दादियां, सर्व वरिष्ठ दादाएं, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से और मेरी तरफ से भी, आप सभी भाई बहनें जो दिल्ली किंग्सवे कैंप और विकासपुरी से आए हैं, आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन तपोभूमि है, वरदान भूमि है, परिवर्तन भूमि है, जहाँ हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियों ने इतनी तपस्या की है। तो पूरा ही चार्ज एटमॉस्फेयर है। ब्रह्मा बाबा के चार धाम जो ओरिजिनल धाम है वो यहाँ पांडव भवन में है, जहाँ आत्माएं आकर के अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, अपनी सर्व कमियां, कमजोरियां, खामियां सहा करते हैं। तो ऐसे स्थान पर आप बैठी करने आए हो तो कितने न भाग्यशाली हो। तो आप अपने लिए ताली बजाएं। आप जब तैयारी कर रहे थे आने की, तो हो सकता है कुछ भाई बहने होंगे जिनका नाम लिस्ट में था, लेकिन एन मौके पर उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और उसकी और उनकी जगह दूसरे आ गए। तो कईयों का जिनका कोई संकल्प में भी नहीं था लेकिन वो आ गए, तो हम तो कहेंगे वो तो सबसे ज्यादा लकी है, तो उनके लिए विशेष ताली। ऐसे कौन है जिनका नाम नहीं था और जब कोई प्रोग्राम भी नहीं था, लेकिन ऐन मौके पर उनकी दीदी ने कहा कि एक सीट खाली है, फलानी या फलाना नहीं आ रहा है, आप आ जाओ, और आ गए। हाँ, अच्छा, हाँ, ऐसे बहुत होंगे। वाह, इतने सारे। तो देखो, हम तो कहते हैं कि जो पहुंच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली। हाँ, फिर से ताली। और आते ही आपको यह हम तो कहेंगे माला मिल गई है, सभी के गले में है ना ये माला। और जो बैज दिया है साथ में उस पर लिखा है बेहद की वैराग्य वृत्ति अंतिम पुरुषार्थ योग तपस्या बट्ठी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि समय कितना तेजी से दौड़ता जा रहा है। अब इस समय के साथ हमें भी उतनी ही गति से आगे बढ़ना है। समय तो बदल रहा है लेकिन अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो समय तो आगे चला जाएगा और हम वही रह जाएंगे। तो आप सभी ने यह पान का बीड़ा अवश्य उठाया है कि समय से पहले हम बदलेंगे, है ना, तभी तो पहुंचे हो भट्टी में। और हम बदल कर समय को बदलेंगे। समय तो इंतजार कर रहा है कि कब हमारे ये होवनहार विश्व महाराजन महारानी देवताएं तैयार हो जाएं, तो सतयुग धरा पर आए। प्रकृति भी तैयार है, समय भी तैयार है, सब तैयार है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। बाबा कहते हैं, कई बार पूछते हैं कि बच्चे पर्दा खोलें, लेकिन बाबा फिर देखते हैं बच्चे तैयार ही नहीं है तो पर्दा कैसे खोले। होता है ना, कोई नाटक होता है और अंदर एक्टर्स अभी तैयारी हो रहे हैं, वो पर्दा खोलने वाले तो खड़े हैं, अभी रस्सी खींचेंगे और पर्दा खुल जाएगा, लेकिन एक्टर्स भी तो तैयार हो तभी तो पर्दा खोलेंगे। तो इसीलिए हम वो एक्टर्स अभी तक तैयार नहीं हैं। तो प्रकृति भी पूछ रही है, एडवांस पार्टी भी पूछ रही है, कब तक कब तक। बाबा कई बार उंगलियों में पूछते हैं डेट बताओ डेट बताओ, लेकिन अभी तक डेट बता नहीं पाए हैं। तो बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा आप ही डेट बताओ, तो बाबा कहते हैं बाबा कैसे डेट बताएंगे, तैयार तो आपको होना है। मुझे याद आता है एक अव्यक्त मुरली जिसमें बाबा ने प्रश्न किया था डेट बताओ कि कब संपन्न बनेंगे कब संपूर्ण बनेंगे। तो बाबा ने एक से पूछा तो उसने कहा बाबा बस इस सीजन के अंत तक बन जाएंगे, इस सीजन के अंत तक बन जाएंगे। तो बाबा ने उससे कहा क्या तुमने सबका ठेका उठाया है, सबका ठेका उठाया इस सीजन के अंत तक बन जाएंगे माना सारे बन जाएंगे, तो क्या सबका ठेका उठाया है आपने। अब वो क्या जवाब दे, तो सबका ठेका तो उठाया नहीं उसने, अपना तो ठेका उठा सकते हैं। लेकिन फिर बाबा ने दादी जानकी से पूछा कि आप बताओ डेट बताओ कब संपन्न बनेंगे कब संपूर्ण बनेंगे। तो दादी ने कहा बाबा मैं तो तैयार हूँ, आज भी मुझे उठा लो, मैं तो तैयार हूँ। तो फिर बाबा ने उनको बड़ा सुंदर जवाब दिया। बाबा ने कहा आप तैयार हो पर इन सबको कब तैयार करेंगे, आप तो तैयार हो पर इनको भी तो आपको तैयार करना है। तो देखो दोनों को बाबा ने ठीक जवाब दे दिया। तो कहने का भाव है कि बाबा इंतजार तो कर रहे हैं घर ले जाने लिए, लेकिन बच्चे संपूर्ण संपन्न नहीं बने हैं। तो किस में संपन्न बनना है, किस में संपूर्ण बनना है, क्योंकि ये दो शब्द है, संपन्न किसको कहेंगे और संपूर्ण किसको कहेंगे। हाँ, इंग्लिश शब्द यूज करें तो संपन्न माना फुल और संपूर्ण माना कंप्लीट। तो फुल भी है और कंप्लीट भी है। और उसका सुंदर उदाहरण है पूर्णमासी का चंद्रमा। तो पूर्णमासी के का चंद्रमा देखेंगे तो वो संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। तो संपन्न किस में है, प्रकाश में। अन्य दिनों पर प्रकाश कम होता है लेकिन पूर्णमासी पर पूर्ण प्रकाश होता है तो उसको कहेंगे संपन्न, और संपूर्ण माना पूरा गोलाकार। अन्य दिनों में पूरा गोलाकार नहीं होता है, तो वो संपूर्ण भी गोलाकार है और संपन्न है लाइट से भी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देवताओं की महिमा में भी संपन्न और संपूर्ण है, कहते हैं ना सर्व गुण संपन्न। तो संपन्न किसमें बनना है? सभी गुणों में। और संपूर्ण किसमें बनना है? सर्व कलाओं में। इसलिए कहे 16 कला संपूर्ण। तो 16 कला माना कंप्लीट। तो 16 कला अर्थात पवित्रता की पूर्ण कलाएं, नहीं तो कलाओं में फर्क पड़ जाता है चंद्रमा में। तो पवित्रता की पूर्ण कलाएं वो कहेंगे संपूर्ण, और सभी गुणों में संपन्न, कोई भी गुण की कमी न हो। जिसमें बाबा दो प्रकार के गुण कहते हैं, एक है आत्मा के अनादि गुण और दूसरे हैं देवताओं के आदि गुण। तो अनादि गुणों में ही संपन्न, अनादि गुणों में भी संपन्न और दैवी गुणों में भी संपन्न, इसलिए सर्व गुण संपन्न। अनादि गुण कौन से हैं हमारे? आत्मा के जो 7 मूल गुण बताते ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये कोर वैल्यूज है, मूल गुण है। मूल गुण, ये मूल्य शब्द भी तो मूल से निकला है। वैसे तो पहले तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो सब्जेक्ट होता था मॉरल साइंस, है ना, मॉरल साइंस। तो उसमें मूल्यों की बातें बताते थे, लेकिन उसमें कोई गुण को महत्व देते थे, तो गुणों की बातें कहते थे। तो कहते थे मॉरल साइंस, मॉरल्स, अच्छी बातें बताना। लेकिन आजकल मॉरल शब्द हट करके वैल्यू शब्द आ गया, इसीलिए वैल्यू एजुकेशन, हम लोगों का भी ये वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, इसी पर ही सारी हमारी एजुकेशन विंग में कोर्सेज है। तो वैल्यू एजुकेशन भी तब हो जब पहले आत्मा का ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो। कई लोग कहते हैं, आप लोग आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा सारा दिन कहते हो, सारा दिन जो आपके भाषणों में आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा के बिना भी तो आप बहुत कुछ बोल सकते हो, आप वैल्यूज पर बोलते हो, तो पर वैल्यूज भी आएंगे कैसे, वो मूल्य आएंगे कैसे, वो गुण आएंगे कैसे, जब तक आत्मा का ज्ञान न है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तब तक वो गुण आएंगे कैसे? क्योंकि गुण धारण करने वाला कौन? वो तो आत्मा ही है ना। और गुणों का सागर कौन? वो तो परमात्मा ही है। तो इसीलिए जब तक आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं दिया है, तब तक ये मूल्य तो आएंगे ही नहीं। और मूल्य भी जब आत्मा परमात्मा का ज्ञान के साथ साथ इसके आधार से हमारे जीवन का भी मूल्य होता है। हम लोग कहते हैं वैल्यू एजुकेशन में, अगर जीवन में मूल्य है तो जीवन का भी मूल्य है, अगर जीवन में मूल्य नहीं है तो जीवन का भी मूल्य नहीं है। तो देखो, जिनके जीवन में मूल्य नहीं है क्या उनकी गति होती है, और जिनके जीवन में मूल्य है और वो आत्मा अगर शरीर छोड़ती भी है तो सब क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति फिर दोबारा नहीं मिलेगा। वो स्पेस छोड़ के गया, वॉइड हो गया, स्पेस छोड़ के गया, ऐसा व्यक्ति फिर नहीं होगा। और जो जिनमें मूल्य नहीं है वो अगर शरीर छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, अच्छा हुआ गया। तो इसलिए अच्छा हुआ गया ऐसे तो न कहे ना, हमारे लिए कहे क्या जब हम शरीर छोड़े, अच्छा हुआ गया। लेकिन ऐसा व्यक्ति दोबारा नहीं मिलेगा, तो उनके गुणों का ही बखान करते हैं, है ना। जब उनका वो बैठना करते हैं तो क्या करते हैं, सारे उनके गुणों की बातें करते हैं। तो हमारा जीवन भी कैसा हो, और फिर बाबा कहते हैं इस संगम युग पर तुम जो कुछ करते हो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो, एक जन्म की नहीं, सब कुछ आपका, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प, सब कुछ 21 जन्मों के लिए जमा होता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये संगम युग का समय कितना अमूल्य है, इसका मूल्य गिनती में नहीं आ सकता है। परंतु ये संगम इतना अमूल्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भगवान हमारे साथ है, स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हमें पावन बना रहे हैं। तो ये जो निश्चय है, जो आज भी बाबा ने कहा निश्चय, इस निश्चय से हम आगे बढ़ते हैं। फिर निश्चय के साथ साथ हिम्मत, आज बाबा ने कहा ना ये तीन शब्द बाबा ने कहा आज, निश्चय, हिम्मत और नष्टो मोहा, ये अगर तीन कदम है तो हम अवश्य मंजिल तक पहुंचेंगे। तो पहले तो निश्चय चाहिए, और माया सबसे पहले हमारा निश्चय ही हिलाती है। फिर चलो हम निश्चय में पक्के हैं, खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, सब में, परिवार में निश्चय, ज्ञान में निश्चय, सब में निश्चय है, लेकिन अंदर की हिम्मत भी तो चाहिए। तो माया सबसे पहले हमारे निश्चय को हिलाती है, फिर निश्चय में पक्के पक्का देखती है तो हमारी, हमको हिम्मतहीन बना देती है। फिर चलो हिम्मत में भी हम आगे बढ़ जाते हैं तो फिर थोड़ा मोह की रग आ जाती है, तो मोह आ जाता है। और गीता का ज्ञान तो है इसी पर, अर्जुन को मोह जीत बनाने के लिए भगवान ने सारा ज्ञान दिया, ऐसे ही कहेंगे ना। कैसा क्या ज्ञान दिया, मोह जीत बनने का ही ज्ञान है सारा। तो उसमें हम बताते हैं कि गीता का अगर सार देखे, पांच कदम है, क्योंकि अर्जुन यही कहता था कि मन तो बड़ा चंचल है, मन तो पापी है, मन तो दुष्ट है, नीच है, घुड़ा है, बहुत कुछ शब्द यूज करते हैं, इस मन को वश करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने उनको दो टिप्स दिए, दो कदम बताए कि ये दो कदमों के आधार पर तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। वो दो कदम कौन से बताए? एक बताया वैराग्य और दूसरा बताया अभ्यास। ये दो कदमों के आधार पर तुम मन को वश में कर सकते हो। इसीलिए लोग वैराग्य जब शब्द सुनते हैं तो डर लगता है कि क्या सब छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा ने वैराग्य की डेफिनेशन ही बदल दी। दुनिया में वैरागी होते फिर सन्यासी बनते, और बाबा कहते हैं तुम्हारा वो वैराग्य नहीं है कि घर बार छोड़ दो और सबको माया समझो। बाबा तो माया किसको कहते हैं और दुनिया वाले माया किसको कहते हैं? दुनिया वाले समझते हैं धन माया है, ये बच्चे बच्चे ये सब माया है, ये गृहस्थी सब माया है, इसीलिए माया को छोड़ो, माना घर संसार छोड़ दो। और बाबा क्या कहते हैं? कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, वो सब माया नहीं है। इसीलिए कई इसमें मुंह जाते हैं ना। तो जब बच्चे कहते हैं कि हम बाबा की सेवा में लग जाएं, शादी नहीं करेंगे मानो, तो लौकिक में क्या कहते हैं? तो लक्ष्मी नारायण ने भी तो शादी की थी, राम सीता ने भी तो की थी, सबने की थी, तो इसीलिए कौन सी तुम, क्यों तुम ऐसे कहते हो नहीं करेंगे? आप कहते हो लक्ष्मी नारायण बनना, पर उन्होंने भी तो की थी। तो बाबा कहते हैं उनमें और क्या और हमारे में तो कितना अंतर है, वो तो पवित्र जोड़े थे, पवित्र युगल थे। तो इसीलिए मूल बात जो बाबा ने बताई है कि कैसे हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है लेकिन फंसना भी कहीं नहीं है, ये है मूल बात। फंसना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, और नया भी नहीं कुछ जोड़ना है। अभी नया बिजनेस चालू करो या नया कुछ नहीं, ये सारा कुछ करो संसार का जरूरत नहीं है, क्योंकि सब वाइंड अप वैसे ही करना है। तो न कुछ छोड़ना है, न कुछ न कहीं फंसना है, और नया कोई जोड़ना है, परंतु चौथा क्या है, निभाना है, क्योंकि हिसाब किताब है अनेक जन्मों का, तो इसलिए निभाना है। तो निभाने के लिए न्यारा प्यारा भी रहना होगा। लेकिन जैसे बाबा के बच्चे बनते, हमारा दुश्मन कौन बन जाता है, माया। हाँ, माया दुश्मन बन जाती है ना। तो माया दुश्मन को जीतने के लिए बाबा पहला हमें कौन सा कदम बताते हैं, हाँ, माया को जीतना, माया जीतना, माया माया माया। बाबा कहते हैं ऐसे मत कहो, पहला कदम है देही अभिमानी बनो। माया आई तब जब देह अभिमान में आए, और जैसे देही अभिमानी होंगे तो माया तो भाग जाएगी। तो गीता में आता है अर्जुन को पहला ही पाठ जो बताया दूसरे अध्याय में, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा के बारे में सब कुछ बताया, जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, जो कुछ बताया। तो वो तो ठीक है, लेकिन जब अर्जुन ने ये सुना इन सबको, भगवान ने कहा इनको आत्मा देखो, तो अर्जुन ने कहा इनको आत्मा कैसे देखूं, ना मोटा ताजा शरीर है ना मोटा ताजा शरीर में आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसको हम कैसे देखें। तो बाबा कहते बस यही तो सूक्ष्मता है, आप खुद भी तो एक आत्मा हो ना, तो आत्मा समझकर आत्मा को देखो, ये पहला कदम है। क्योंकि जैसे ही शरीर को देखा तो क्या होता है, हम कई बार बताते हैं ना, ये जो हमारा मस्तक है, ये मस्तक सीधा है और सबका एक जैसा है, सीधा ही है ना, ऐसे नहीं टेढ़ा बांका है, सबका एक जैसा मस्तक है। लेकिन और थोड़ा मस्तक के नीचे आओ तो बाकी सब अलग अलग है, किसकी आंखें कैसी होती है, किसकी आंखें कैसी होती है, फिर नाक कैसा होता है, किसका मोटा किसका पतला फिर होंठ किसके तो बहुत बहुत मोटे होते हैं, तो ये तो चलो मुख फिर भी सतो स्थिति है। लेकिन और नीचे आओ, हाँ, फिर रजो, फिर तमो शरीर के नीचे। इसलिए बाबा कहते हैं शरीर को देखो ही नहीं, किसको देखो, आत्मा चमक रही है बस भ्रकुटी के बीच। अब उसमें दृष्टि लो तो आत्मा को देखो या आंखों में देखो, तो आंखों में भी वो तारा चमक रहा है, माना प्रकाश है। आंखों में जब लाइट नहीं होती दिखाई नहीं देता, वो तारा जो बीच में है वो भी नहीं दिखाई देता, तो इसीलिए आत्मा को देखो। तो आत्मा का ज्ञान दिया, लेकिन आत्मा का ज्ञान तो अर्जुन को दिया लेकिन वो समझा नहीं, क्योंकि आत्मा के ज्ञान से मोह नष्ट हो सकता है। ये मामा चाचा काका गुरु गुसाई ये जो भी है, ये सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं। बस आत्मा देखो तो देह का आकर्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन अर्जुन नहीं समझा। फिर दूसरा कदम भगवान ने क्या उनको बताया, क्योंकि युद्ध करना है तो माया से युद्ध। फिर दूसरा कदम क्या बताया कि अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, और उनकी पहचान दी, तुम कौन हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय जो होते हैं ना, उनके लिए तो बहुत कुछ कथाएं हैं, बहुत कहानियां हैं। वो युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनकी पत्नी उनको तिलक लगाती थी, विजय का तिलक, और उनको कहती थी वापस आना है तो विजयी बन के आना है, नहीं तो वापस हार खाकर नहीं आना है, विजयी बन के आना है। तो इसलिए तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय हो इसीलिए तुम रणभूमि से भाग नहीं सकते हो। आपके आगे की पीढ़ियां क्या कहेगी कि हमारे पूर्वज कमजोर थे, हमारे पूर्वज जो थे वो इतने कमजोर थे जो मैदान से ही भाग गए, तो ऐसा तो नहीं बनना है, तो आपका भी नाम बदनाम होगा। तो इसीलिए आप शूरवीर हो, आप महावीर हो, आप क्षत्रिय हो, आप और आपके दादा परदादा उनके भी आगे उन्होंने कभी हार नहीं खाई, विजयी थे, तो तुम भी विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। अब ये सब भगवान ने कहा, लेकिन तो भी अर्जुन के पल्ले नहीं पड़ा। बाबा भी हमें कहते हैं तुम विजयी हो, जिनके साथ भगवान स्वयं है पांडवों के साथ, वो हार कभी खा ही नहीं सकते। क्योंकि भगवान हमारे साथ है, तो जिसके साथ भगवान है वो कैसे हार खा सकता है। लेकिन क्यों अर्जुन फिर भी तैयार नहीं हुआ? क्योंकि उसको उसके अंदर फिर मोह जागृत हुआ, तो कहा कि मैं इनको मार के क्या हासिल करूँगा, क्या हासिल करूँगा, तो क्योंकि तो मोह वश था ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अपनी अपनी को पहचानो, स्मृति लाओ। रोज बाबा नए नए टाइटल्स देते हैं, रोज बाबा नए नए हमें स्वमान देते हैं। वो सब स्वमान क्या है, हमारे टाइटल्स क्या है, ये हमारा ही ओरिजिनल स्वरूप है। तो वो स्मृति दिलाते हैं, जिस स्मृति से समर्थी आती है। परंतु अर्जुन ने फिर भी नहीं समझा। फिर अर्जुन को फिर तीसरी बात कही, समझाने के लिए तीसरी बात कही कि हे अर्जुन, ये इस युद्ध के मैदान में अगर तुम जीतेंगे, विजयी बनेंगे, तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे, तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग का अधिकार तुम्हें मिलेगा। तो अर्जुन और निराश हो गया, कहता ऐसा स्वर्ग क्या चाहिए जो मैं अपने रिश्तेदारों को मार के स्वर्ग लूं, ऐसा स्वर्ग हमको चाहिए ही नहीं। हाँ, कई लोग हम लोगों को कहते हैं ना कि तुम स्वर्ग, कहते हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग का महाराजा महारानी बनेंगे, तो तुम लोग तो कितने स्वार्थी हो। तो हम उनको कहते स्वार्थी नहीं है हम तो सबके शुभ चिंतक है, हम सबके शुभ चिंतक है, क्योंकि हम अकेले नहीं जाएंगे, आपको भी लेके जाएंगे आपको भी लेके जाएंगे, तो हम आपके शुभ चिंतक है। इसीलिए ये मत सोचो हम महाराजा महारानी बनेंगे स्वर्ग का। तो अर्जुन को भी यही कहा, तुम महाराजा बनोगे, स्वर्ग का मालिक बनोगे, तो उसने कहा ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं, तो नहीं माना। फिर चौथा उन्होंने कौन सा उपाय रचा अर्जुन को, कहा ही अर्जुन ये सब भरे पड़े हैं, इन सब को मरा हुआ देखो, मरा हुआ है ये सब। तो अर्जुन को साक्षात्कार कराए, कैसे ये सारे मामा चाचा काका गुरु गुसाई सब की मौत हो गई है, सब एकदम वो कब्रिस्तान बन गया। तो अर्जुन तो और ही निराश हो गया, तो कहा मेरे कारण ये होगा, मेरे कारण ये भी ना ये सब मरेंगे, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा जो मेरे कारण इतने सब मर जाए। फिर भगवान ने कहा इनकी मौत तो निश्चित है, तुम इनको मारो या नहीं मारो, इनकी मौत तो निश्चित है। तो कहा अपने आप मरे तो और बात है, पर मैं क्यों मारूं, मैं, फिर वही अभिमान का मैं आया। लेकिन कैसे माना अर्जुन, कैसे माना, जब अर्जुन को विराट स्वरूप का साक्षात्कार कराया कि ये तुमको कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है ये सारा सारी बातें। हाँ, तो विराट रूप वो तो विष्णु दिखाते हैं, तो भगवान तुम्हें ये कह रहा है। परंतु उस समय उनको ये भगवान मुझे कह रहा है ये निश्चय नहीं था, इसीलिए मन में प्रश्न थे, संशय था, बहुत कुछ था। तो ये भगवान मुझे कह रहा है, तो इसीलिए जब उसके अंदर ये निश्चय बैठा कि भगवान मुझे कह रहा है, तो मुझे जो कहेंगे घुटने टेक करके हाथ जोड़ के कहा बस आप जो कहेंगे मैं करने लिए तैयार हूँ। तो बच्चे भी क्या करते हैं, बाबा आप कहते तो हैं लेकिन मन तो नहीं मानता, ये होता नहीं, ये है वो है, कितनी बातें सुनाते, तो बाबा मुस्कुराते हैं बच्चों पर। तो इसीलिए सारी गीता किस पर है, हम अर्जुन पर, जो ओटे सो अर्जुन। लेकिन उसके लिए पक्का अर्जुन बनना पड़ेगा जो भगवान के आगे घुटने टेके और कहे बाबा आप जो कहेंगे हम करने लिए तैयार है। ऐसे है ना अर्जुन, आप सभी ऐसे अर्जुन हो ना, तभी तो भाग भाग के आए हो मधुवन। तो इसीलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसीलिए आप भट्टी करने आए हो तो उसमें सबसे पहला बेहद की वैराग्य वृत्ति, तो वैराग्य बहुत जरूरी है। तो वैराग्य का मतलब बताए छोड़ना नहीं, पर राग रहित रहना, क्योंकि माया को हमने समझ लिया है, युद्ध हमारी माया के साथ है। सबसे पहले माया को हमने क्या समझा है, कि ऐसे नहीं कि कोई धन को छोड़ देना, धन तो सेवा में लगाना है। बाबा कहते पूछते हैं बाबा से कि बाबा हमारे पास इतना धन है हम क्या करें, बाबा कहेंगे शिव बाबा को तो चाहिए नहीं, जो भी यह मकान बनाते सब अपने ही रहने के लिए बनाते हैं, आप ही रहेंगे, शिव बाबा को तो चाहिए नहीं, वो तो अब भोगता है ना खाता है ना पीता है है ना, आप अपने लिए ही करते हो। तो ये धन तो सेवा में लगाओ, माया समझ करके छोड़ना भी नहीं है, अधिकार है आपका, क्यों नहीं लो, परंतु सेवा में लगाओ तो भाग्य बन जाएगा। तो सन्यासी तो धन को माया समझ के छोड़ देते हैं। फिर बाबा कहते हैं वो मन को भी समझते, मन तो दुश्मन है इसलिए मन को मारने की कोशिश करते हैं, मन को शून्य बनाने की कोशिश करते, कुछ सोचे ही नहीं। और बाबा कहते हैं मन तो आपका मित्र है, ये मन ही तो है जो परमात्मा से मिलाता है, इसीलिए तो भगवान ने कहा ही अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ, तन को मेरे में लगाओ नहीं कहा, कहीं भी हठयोग का वर्णन नहीं है गीता के अंदर, इस मन को मेरे में लगाओ। तो ये मन ही है जो हमारा सच्चा मित्र है, और उसी मन को कैसे वश में करना है, कैसे वश में करेंगे, बाबा क्या मिसाल देते हैं मन को वश करने लिए, मन को एक, मन तो एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भले चंचल है लेकिन इनोसेंट है, बहुत निर्दोष है, भोला है, उस मन बच्चे को कैसे वश में किया जाता है। अगर बच्चे को मारेंगे पीटेंगे उनका, उनको बांधेंगे, उससे थोड़ी वश में होगा, वो तो चिल्लाएगा, चलो उसका मुंह भी बंद कर दो हाँ तो भी जबरदस्ती वो अपने आप को छुड़ाएगा, चंचल है। तो छोटे बच्चे को जो चंचल है उसको माँ कैसे वश में करती है, कैसे करती है हाँ? प्यार से, पर प्यार भी नहीं मानता है, समझता है तो केवल प्यार नहीं, ऐसा जो जिससे वो सचमुच उसमें लग जाए, उसको कुछ काम देते हैं, है ना। छोटे बच्चों के लिए कई गेम्स होती है, इसमें क्रिएटिव गेम्स होती है, ये तोड़ो फिर जोड़ो फिर ये करो फिर नया बनाओ, तो वो उनसे उनकी क्रिएटिविटी आती है, रचनात्मकता आती है, और उसमें वो बिजी हो जाते हैं। तो बिजी हो गई तो चंचलता छोड़ देंगे, क्योंकि काम मिला ना उनको, ऐसे ही बांध के बिठाओ तो चंचलता छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ दो तो वो तो बेलगाम घोड़ा हो जाएंगे इसलिए छोड़ भी नहीं सकते हैं, उसको पकड़ के रख भी नहीं सकते हैं, पर तो उसको काम दो। तो बाबा भी हमको रोज काम देते हैं, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक एक काम तो सबको मिला ही है, स्वमान कोई न कोई एक अपना सारे दिन का बनाओ, आपको भी रोज का एक स्वमान देंगे, उस स्वमान में रहो, और उस स्वमान में रह करके अपनी स्थिति बनाओ, तो देखो मन क्यों नहीं वश में होगा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं वैराग्य लाना माना राग रहित होना, क्योंकि और कुछ माया ये नहीं है धन संपत्ति, धन तो लक्ष्मी के पास देता, वो तो धन की देवी है, तो धन की देवी लक्ष्मी है और उसको माया समझेंगे क्या। तो धन को भी नहीं छोड़ना है, मन को का भी दमन नहीं करना है, लेकिन मन को मोड़ना है, जिसको बाबा कहते दिशा देनी है, तो इसको कहेंगे परमात्मा तरफ दिशा देनी है, मैं कौन मेरा कौन। जानकी दादी यही कहती थी ना, तीन बार ओम शांति कहकर क्या कहती थी दादी जानकी, मैं कौन मेरा कौन मुझे क्या करना है, इतने नशे से कहती थी। तो यही तो है स्वमान और स्वयं को ही सम्मान देना, अपने आप को पहचानना। तो वैराग्य वृत्ति में माया को हम कैसे जीतते हैं, माया माया कह करके नहीं, बच्चे भी माया नहीं है, बच्चे तो फूल है इनोसेंट है, लेकिन ये बाबा के हैं, फिर ये तन को भी कष्ट नहीं देना है, ये माया नहीं है, ये तन है तो बाबा कहते हैं तुम इस तन से सेवा करोगे। कई कहते हैं ना बाबा जल्दी उठा लो जल्दी उठा लो, तो बाबा कहते हैं अगर जल्दी उठा लो और संपन्न तो बने नहीं हो तो फिर कब, फिर पुरुषार्थ कैसे होगा। इसीलिए कई बार पूछते हैं संगम युग प्यारा है या बाबा जल्दी ले जाए कर घर, क्या प्यार है, क्या कहेंगे हुँ? क्या कहेंगे, जल्दी जाना है या संगम जो प्यारा है, बाबा साथ है ना, वहां तो मिलेगा नहीं, परम धाम में साथ होते हुए भी पता नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ भगवान हमारे साथ है। तो तन का, तन से भी वैराग्य नहीं, वैराग्य का मतलब है कि तन को बाबा कहते चतियां लगा के भी चलाना है, चतियां लगा के भी चलाना है, कोई दवा को दुआ शरीर को चलाना है, वो भी नहीं कि सारा दिन शरीर का ही सोचते रहो, नहीं। लेकिन मन अगर हमारा शक्तिशाली है तो तन अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं 80% जो शरीर के रोग है ना वो साइकोसोमेटिक है, मन के कारण है, चिंता भय या क्रोध ईर्ष्या आदि जो विकृतियां हैं वो जो मन में घर कर लेते इसका असर तन पर पड़ता है। और बाबा ने जो ज्ञान दिया उनसे तो हम इन सब से पार चले जाते हैं, तो मन में भी शांति रहती है तो ऑटोमेटिकली तन की 80% बीमारियां तो आएगी नहीं। तो इसीलिए ये तन मन धन को सफल करना है, ये भगवान हमें सिखाते हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं। तो वैराग्य का मतलब है सब कुछ करते न्यारा, इसीलिए बाबा ने कमल का फूल हम सबको दिया है, ये हमारी निशानी है कमल का फूल। और विष्णु के हाथ में जो कमल का फूल दिखाते हैं वो उतना ही हिस्सा है जितना कीचड़ से ऊपर है, सारा पेड़ नहीं दिखाया उसके हाथ में, कमल डंडी, कमल लकड़ी, कमल जड़े, कमल पत्ते वो सब नहीं है, कितना हिस्सा है केवल उतना ही जो कीचड़ के ऊपर है। तो यही तो हमें बनना है। तो फिर बाबा कहते हैं तो तुम्हारे अलंकार लेकिन तुम गिरा देते हो क्योंकि माया के वश हो जाते हो, तो इसीलिए देवताओं को दे दिया है। तो बाबा ने हमें ये बेहद की वैराग्य वृत्ति का सबसे पहला कदम बताया और उसके लिए देही अभिमानी बनाया। तो पहले देही अभिमानी बनो, फिर दूसरा कदम क्या बताया, सब संबंध एक से जोड़ो, सर्व धर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, का दे के सब धर्मों को त्याग मेरी शरण में आओ, ये शिव बाबा कहते हैं। तो सब संबंध मेरे एक शिव बाबा के साथ है, बस देहधारियों के साथ संबंध तो कर्मों अनुसार है और कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ कोई किसी का नहीं, देहधारियों के साथ साथ संबंध तो एक जन्म का है, अगले जन्म में यही संबंध मिलेंगे कोई जरूरी नहीं है, सब बदल जाएंगे। देहधारियों को हम इस जन्म में याद करते हैं, अगले जन्म में कहाँ याद करेंगे, पता ही नहीं होगा वो आत्मा कहाँ गई, हम कहाँ गए हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान के साथ तो हमारा संबंध जन्म जन्म का है। द्वापुर से हमने भगवान को याद करके यही कहा ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो माता पिता बंधु सखा स्वामी सद्गुरु, एक का एक के साथ सर्व संबंध। तो जब हमने ये बात समझ ली तो हमें क्या करना है, छोड़ना भी नहीं, फंसना भी नहीं, जोड़ना भी नहीं, निभाना भी है लेकिन अंतर में एक से सर्व संबंध, बस मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। आपके बहुत सारे क्लासेस है इस पर, इस भट्टी में होंगे, आपको आगे बताएंगे। तो भट्टी में पकना, भट्टी क्यों करते हैं, ताकि उसमें आप पक सको। तो भट्ठा भट्ठा होता है ना, तो उसमें अग्नि होती है, बहुत तेज अग्नि होती है, तो अग्नि में कोई भी चीज पड़ती है वो बदल के आती है बाहर, उसी तरह वापस नहीं आती है ना। कितनी चीजें देखो आग में डालते हैं, कोई भी कठोर चीज होती है, आलू बैंगन टमाटर सब्जियां भी होती है, तो बैंगन आप ऐसे आग में डालो बर्था बन जाएगा, है ना, तो बर्था अच्छा लगता है, ऐसे कच्चा बैंगन खाओ तो कैसा लगेगा, तो इसीलिए बर्था बहुत पसंद आता है। परंतु वो कैसे बर्था बना, आग में उसको पकाया सीखा। टमाटर भी ऐसे ही, आलू भी ऐसे ही ना, बॉईल करते ना, खाली आग में डालेंगे तो भी वो नरम हो जाते हैं। तो जो कठोर चीज है वो मुलायम बन जाती है। और उसका इसके विरुद्ध दूसरी भी चीज है, ईंट, मिट्टी है, लेकिन मिट्टी को आग में डाला उसको ईंट के रूप में, तो वो इतनी पक्की ईंट हो जाती है जो अगर गिराओ तो भी टूटेगी नहीं, पर है तो मिट्टी ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अंदर में इतना स्ट्रांग बनना है, इतना स्ट्रांग बनना है कि कोई मुझे हिलाए कितना भी पर मैं ना हिलूं, इतना मुझे स्ट्रांग बनना है ना। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को इतना मजबूत बनाते हैं, तो पकेंगे भट्टी में तभी तो मजबूत बनेंगे कि कोई भी परिस्थिति आए मैं स्थिर रहूं, वो परिस्थिति मुझे हिलाए नहीं, पर मैं अपनी स्वस्थिति से उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करूं। इसको कहेंगे भट्टी में पकने से मजबूत हुए। फिर तीसरा क्या करती अग्नि, क्या करती है तीसरा, उसमें अगर सोना डालते हैं खाद वाला तो वो सारी खाद निकल जाती है। और ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है। सोने का जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत हाई होता है। लोहा, तांबा, चांदी, सोने के टेम्परेचर से ना पिघलने का जो टेम्परेचर उससे कम होता है। तो इसीलिए बहुत स्ट्रांग भट्ठा चाहिए ताकि और सब पिघल जाए, तो और सब पिघल जाता है और सोना ऊपर आ जाता है, तो वो सब पिघल करके बाद वो नीचे चला जाता है तो सोना ऊपर आ जाता है। तो और वो सोना इतना हल्का होता है, और उस सोने को आप जितना भी मोड़ना चाहो उसको मोड़ सकते हो। इसलिए आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा, हाँ सोना, हाँ क्या कहा, सोना वो सच्चा सोना किसको कहेंगे जो मुड़ सके, मोल्ड हो सके। इसलिए बाबा देखो जब नयों से मिलते हैं, पहली बार आए हुए बच्चों से मिलते हैं, तो बाबा उनको क्या कहते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो आप भले लेट आए हो लेकिन टू लेट नहीं आए हो, फिर भी आप फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हो। चलो देर से आई हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगी, मिल जाएगी, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। और जो पुराने हैं उनको बाबा क्या कहते हैं, पुरानों को बाबा क्या कहते हैं, और पुरानों को बाबा कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड। आप समझो 30 साल से ज्ञान में चलते हैं, तो ये 30 सालों में आपके जीवन में कितने विघ्न आए होंगे, लेकिन फिर भी आप पक्के हैं। हाँ, वो विघ्नों को डोंट केयर किया, तो भले 30 साल हो गए और आप उन विघ्नों को जीत करके आप विजयी बन के निकले हो, तो कितने शक्तिशाली हो। हिम्मत नहीं हारी आपने, नष्टो मोहा बन गए सहज, वैराग्य वृत्ति पूरी लाई अंदर में, और एक बाबा दूसरा न कोई यही रखा है अपनी बुद्धि में। तो देखो 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, आपको बताए ना 50 साल से हम यही सेवा कर रहे हैं। मैं जब शुरू शुरू में ना, मैं तो विदेश सेवा में थी, अफ्रीका में और मॉरिशियस में सेंटर्स खोले 74, 75, 76 में। तो पिछले साल 50 साल हुए अफ्रीका सेवा को, 74 में शुरू किया था अफ्रीका में सेवा। तो बताए 50 साल पहले गई का जो अभी गए थे हम लास्ट ईयर अफ्रीका सेवा में, तो इसमें हम बताते 50 साल से हम राजयोग शिविर करा रहे हैं, अभी तक चल रहा है। हाँ, राजयोग शिविर। तो किसी ने मेरे से पूछा कि आप बोर नहीं हो जाते हो, वही आत्मा परमात्मा वही क्लासेस कराना, अब ब्राह्मणों को क्लास कराना, उसमें तो नई नई पॉइंट्स है, पर शिविर में तो वही होता है ना, जो लेसन होते हैं 7 दिन का कोर्स टाइप ही होता है। तो हम उनको क्या कहते हैं, हमको तो जितनी बार कराते उतनी बार कोई नवीनता अनुभव होती है, तो बोर होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि और शक्ति बढ़ती है और रिफाइननेस आती है, इसीलिए बोर होने की तो बात ही नहीं है। लेकिन जब मैं 76 में मधुबन में रहना शुरू किया, तो विदेश में रही और बहुत सेवाएं हुई, बहुत कुछ किया, और फिर दादी जी ने मुझे यहाँ रखा 76 में। तो केवल राजयोग शिविर और फॉरेनर्स की सेवा, क्योंकि इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते थे तो मुझे कुछ, और फिर एक ही जगह मधुबन में, कहीं बाहर नहीं गए, तो 3 साल तक मैं कहीं नहीं गई। तो एक दिन में से मैंने कहा कि हम तो जैसे बोर हो जाते ना, वही सेवा, तो बोर हो गए। तो मुझे याद है मैंने एक बार निर्वैर भाई थे, तो निर्वैर भाई को ये बात मैंने कही कि देखो हम सेंट्रो पर रहते तो कितनी वैरायटी सेवा होती है, अब यहाँ तो हर एक डिपार्टमेंट है, हर एक की अपनी अपनी सेवा है, हर एक अपनी अपनी डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, मुझे तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सेंटर पर तो सब कुछ करना पड़ता है, ऑलराउंड सेवा होती है। तो निर्वैर भाई ने मुझे बहुत अच्छी बात सुनाई, पहले कहा कि देखो जब तुम स्कूल में थी तो कितने तुम्हारे सब्जेक्ट्स थे, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, 8-10 कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा फिर तुम पहले 7वीं तक तो बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर थोड़ा 8वीं तक आओ या 12वीं तक आओ तो सब्जेक्ट्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं। फिर आप कॉलेज में आए, चलो ग्रेजुएशन किया तो और सब्जेक्ट्स कम हो गए, फिर चलो बीए के बाद फिर एमए किया तो और सब्जेक्ट कम हो गए, फिर उसने पीएचडी किया तो वो एक सब्जेक्ट में भी एक भाग केवल, फिर उसमें थीसिस लिखी तो ये सब लिखा तो पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री मिल जाती है, तो उसमें सब कट 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 करते करते पर एक में माहिर बनना है। आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनोगी तो फायदा नहीं होगा, बिकम मास्टर ऑफ वन। तो मैंने कहा कि देखो हम बात थे विदेश में तो सब जगह जाते रहते थे, तो कहा यहाँ भी आपको बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे, आप उसमें मास्टरी कर लो तो एक ही सब्जेक्ट में मास्टरी होगी तो उसके लिए क्यों नहीं बुलाएंगे आपको। तो देखो फिर उसके बाद पर मैंने संकल्प ही छोड़ दिया, और फिर जो बताए ना हर की पौड़ी, बाबा ने ये हमको वरदान दिया तो बाबा ने मेरे से पूछा आप कौन सी गंगा हो, तो मैंने कहा ज्ञान गंगा हूँ, तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगा है तो और भी सब है, आप विशेष कौन सी गंगा हो, तो मैंने कहा दूसरी कौन सी गंगा होती है, फिर तो मैंने कहा बहती गंगा, तो बाबा ने कहा बहती गंगा तो वो है जो सेंटरों पर रहती है, क्योंकि वो आज इस सेंटर पर, पहले तो ऐसे होता था ये आज इस सेंटर पर है, कल उसकी ट्रांसफर हो गई दूसरे सेंटर पर, परसों तीसरे सेंटर पर, तो कभी पता नहीं कहाँ किस सेंटर पर ट्रांसफर हो जाए, तो इसीलिए वो बहती गंगाएं हैं, आप कौन सी गंगा हो। अब तीसरा नाम तो आए नहीं, गंगा कौन सी, तब बाबा ने मुझे कहा तुम हर की पौड़ी की गंगा हो, क्योंकि हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है ना तो वो ऐसा स्थान है जहाँ सारी दुनिया आती है स्नान करने के लिए। तब बाबा ने कहा तुम हर की पौड़ी की गंगा हो, सारी दुनिया तुम्हारे में यहाँ आके नहाएगी, ये भगवान ने कहा। तो जैसे बाबा ने ये कहा तो मेरा संकल्प बंद हो गया कि मुझे कहीं जाना ही नहीं, बस यहीं बाबा की सेवा में रहना है। हाँ फिर तो देखो बाबा तो देश विदेश घुमाते हैं, हर साल जाते हैं हर साल, तो लेकिन किस लक्ष्य से कैसे जाते हैं, बाबा की सेवा अर्थ, और कुछ भी घूमने फिरने, मॉल्स देखना, खरीदारी करना, कभी नहीं हमको संकल्प आता है कि हम ये सब कुछ करें, बस बाबा की सेवा, बाबा की सेवा। और जब विदेशी भी यहाँ आते हैं तो वही सेवा लेते हैं, तो इसीलिए बस यही सेवा का ही एक लक्ष्य होता है, बस और कुछ नहीं। तो देखो इतने सालों तक वही सेवा कर रहे हैं लेकिन कभी बोर नहीं होते, और भट्टियाँ कराने का इतना सुंदर बाबा ने मौका दिया है, हर 4-5 दिन के बाद, हफ्ते के बाद नया ग्रुप आता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो आप सभी आए हो दिल्ली से, बहुत अच्छा लगता है, और हमारी टीचर बहनों से मिलने का भी मौका मिल जाता है इसी बहाने। तो इसीलिए आप भट्टी में आए हो पकने के लिए, तो इतना पक करके जाना जो एकदम बदल कर जाना, बिल्कुल अपनी कमियां कमजोरियों को देखना क्या है, और 4 दिन के बाद वो सब सुहा करके जाना। तो फिर और क्या बनना है, जैसे कोयला डालो आग में तो कोयला डालने से क्या होता है, हाँ वो राख बन जाता है, उसका रंग ही बदल जाता है, लाल लाल पहले होता है, फिर देखो वो राख बन जाता है, कोयला कितना काला होता है, तो हम भी तो आत्माएं कैसी थी, काली कोयली जैसी थी, और बाबा ने हमको कितना चमका दिया। तो अभी जब योगी बनते चाहे किसी का रंग सांवरा भी क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत सुंदर लगता है। जैसे छोटे बच्चे इनोसेंट होते हैं ना, भले वो उनका चमड़ी का रंग थोड़ा कोई ऐसा नहीं सुंदर हो, लेकिन फिर भी बड़े प्यारे लगते हैं। तो योगी वो जिसका अंग अंग शीतल है, तो कितना प्यारा लगता है वो। तो तपत बुझाए, कैसे तपत बुझती हमारी, भट्ठी में पकने से बदल जाते हैं। तो यहाँ से ऐसे बदल के जाना है। आज ही अपने अंदर ये निश्चय करो कि मेरे अंदर ये कमी है या कमजोरी है या खामी है, कोई भी डिफेक्ट है जो मैं अभी तक जीत नहीं पाया हूँ, वो बाबा के रूम में जा कर के या झोपड़ी में जा कर के बाबा को पत्र में लिख करके, तो बाबा इस भट्ठी में ये बिल्कुल स्वाहा करके जा रहा हूँ और एकदम नया बन के जा रहा हूँ। और जैसे आपको बताया, चार दिन बिल्कुल ऐसा पकना है, दुनिया की बातें सोचनी नहीं है, क्या हो रहा है दुनिया में, कौन जीता कौन हारा, हाँ हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इस माया के युद्ध में अपने आप को जिताना है। और हम बाबा के साथ हैं, बाबा हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं, तो साथ भी है और साथी भी है, ये निश्चय करो। एक होता है साथ, दूसरा होता है साथी, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, बाबा ने एक मुरली में साथ और साथी का एक वरदान में, तो साथ भी है और साथी भी है। हाँ, तो कई अर्थ निकाल सकते हैं, कोई तो कहेंगे एक ही तो है साथ है या साथी है, लेकिन दूसरे अर्थ भी निकल सकते हैं। साथ माना जैसे जुड़े हुए हैं, साथी माना अलग है परंतु साथ में चल रहे हैं। तो साथ माना सदा जुड़े हुए, अलग हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, वो जैसे एक वो दिखाते हैं ना, कई ऐसे होते हैं जो जन्म से ही जुड़े हुए होते हैं, चाहे सिर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पीठ से जुड़े हुए होते हैं, तो ऑपरेशन करके उनको अलग करना पड़ता है। कई तो अलग हो पाते हैं, कई तो ऐसे नस एक ही होती है, तो वो अगर अलग किया तो वो जिंदा नहीं रहते हैं। लेकिन जुड़ा हुआ है माना ऐसा जुड़ा हुआ है जो अलग है ही नहीं, साथ सोना, साथ खाना, साथ चलना, साथ बैठना, साथ साथ, इसको कहेंगे साथ। और दूसरा है साथी, तो साथी माना साथी मेरे साथ है, वो कहेंगे। तो जब बाबा साथ साथ है तो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, हजारों भुजाओं वाला मेरे साथ है। तो ये दो भुजाएं केवल नहीं चल रही है, कितनी भुजाएं हैं, हजारों भुजाएं मेरे इसके साथ है। तो कई बार हम थोड़ा बेचैन हो जाते हैं ना, या दिल शिकस्त हो जाते हैं, हाय मैं अकेली हूँ, कितना काम मुझे करना पड़ता है, कोई नहीं है मेरे साथ, सब मुझे छोड़ के चले गए, मुझे अकेला छोड़ के चले गए, इतना काम पड़ा है, ऐसे सोचते हैं क्या बहने? ऐसे सोचती है कभी कभी, तो सोचती होगी सदी को, हाँ कर रहे हैं, कभी कभी सोचते हैं, भाई लोग भी सोचते हैं ये धंधे में फलाना फलाना पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे अकेला छोड़ के चले गए, आता है कभी? या बाबा साथ है तो बाबा उसे भूल जाता है क्या? नहीं, कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझो, कभी भी नहीं, बाबा मेरे साथ है। तो साथ जुड़ा हुआ है, ये दो हाथ नहीं हिल रहे हैं, पर हजारों भुजाएं एक साथ हिल रही है, तो काम तो मिनटों में हो जाएगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर रहा हूं। और साथी को साथ रखो, उसमें भी देखना होता है, अकेला नहीं हूं, साथी मेरे साथ है। तो कहीं भी कुछ ऐसा डरावनी बात आ जाए, हाय पता नहीं कुछ हो ना जाए, मैं तो अकेला हूं, लेकिन नहीं, हाँ बाबा मेरे साथ बैठा, उनसे बातें करो, हाँ बाबा आपको सब आगे बढ़ाएगा, राय देगा, बाबा आपसे दूर नहीं है, बस याद करो और बाबा आपके सामने। इसको कहते हैं जैसे लैला मजनू की आज बात कही ना, मैंने आज बताया वो लैला मजनू पिक्चर आई थी, सोहिनी महिवाल ये भी एक फिल्म थी, ये भी लैला मजनू की तरह सोहिनी और महिवाल। तो वो विकार के लिए नहीं था उनका कोई प्यार, लेकिन बस सामने देखो, बस सामने देखो, बस सामने देखा खुश हो गए। तो उसमें दिखाते वो कुछ भी पक पक कर रही है और अपने वो माशूक को याद कर रही है और माशूक प्रकट हो जाता है, वो माशूक उसको याद करता है, वो प्रकट हो जाती है, बस प्रकट हो जाती है, एक दो को देखते खुश हो जाते हैं बस। तो उसको कहेंगे आशिक माशूक। तो बाबा से भी हमारा वही संबंध है, आशिक और माशूक को याद करो वो बिंदु आपके सामने आ जाए। मैं भी आत्मा बिंदु, बाबा भी मेरे सामने बिंदु। और जैसे ये अनुभव होगा आप कभी भी अपने को अकेला नहीं समझेंगे। कई भाई बहने अपना अनुभव सुनाते, हम कई एक रात को जा रहे थे, अंधेरा था, रोशनी बिल्कुल नहीं थी और थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कोई ऐसे आएगा तो कुछ हो ना जाए, लेकिन मैंने बाबा को इतना याद किया, इतना याद किया जैसे बाबा मेरे साथ ही है, साथ ही बन के साथ है। तो कोई एक आया भी, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे अकेला नहीं देखा, कोई मेरे साथ है, तो इसीलिए कुछ भी नहीं किया क्योंकि कोई मेरे साथ है। तो कोई अनुभव भी सुनाते हैं कि देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उनके साथ है, तो कौन बूढ़ा व्यक्ति उनके साथ है, तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा को याद किया और जैसे बाप दादा साथी बन के साथ चल रहा है और वो रास्ता पार हो जाता है। तो इसीलिए न डरना है, न संकोच करना है, न कोई चिंता करनी है। और ड्रामा का ज्ञान तो बाबा ने इतना अच्छा सुंदर दे दिया है, ड्रामा का ऐसा सुंदर ज्ञान बाबा ने दिया है जो एक सेकंड में स्टॉप लग जाता है। आपका कल क्लास भी होगा स्टॉक और स्टॉप, बाबा ने उस दिन मुरली में कहा, उस पर भी कई मुरलियों से ली है टॉपिक्स और आपके क्लासेस उसी पर होंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा, अभी 7 बज रहे हैं और हमारे बीच अभी मधुरवाणी ग्रुप आएगा और आप सबके स्वागत में गीत गाएगा।
आदरणीय दीदी जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम उस हर की पौड़ी के सामने बैठे हैं जहाँ सारा विश्व आता है और ज्ञान का वो सुंदर सा अमृत पाकर धन्य धन्य हो जाता है। ऐसे ही मुझे लगता है हम सभी दीदी जी का ये पहला जो हमने ज्ञान अमृत प्राप्त किया है इसी से सभी धन्य हो चुके हैं। अभी इसी के साथ साथ ये श्रृंखला तो हमारी शुरू रहेगी और दीदी जी के इस सुंदर ज्ञानामृत के बाद मधुरवाणी ग्रुप भी यहाँ आया हुआ है और उसके साथ साथ एक कन्या है वो भी दीदी जी के स्वागत में एक नृत्य पेश करेगी। लेकिन इसके पहले आदरणीय दीदी जी का स्वागत करेंगे तो साधना दीदी को मैं विशेष रूप से कह रही हूँ दीदी जी का स्वागत, तिलक चुनरी ये करके आदरणीय दीदी जी का स्वागत करें। इस मन भावने स्वागत के बाद अभी एक बहुत सुंदर एक गीत आदरणीय सतीश भाई जी, बहुत सुंदर गीत निरंजन भाई और अल्दर भाई त्रिमूर्ति आज विशेष रूप से आप सभी के स्वागत में गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, बाबा मम्मा दादियों की कर्म भूमि, सेवा भूमि, सबको आकर्षित करता है। यहाँ आंधे ही से सभी का योग लग जाता है, सहज योग लग जाता है। तो आप सबका आज तो विशेष दिल्ली दरबार बैठा है और दिल्ली दरबार के सब राजे महाराजे ही बैठे हैं। आप अपने अभिनंदन में एक बार तालियां बजाएं। और ये बात सत्य है कि हमारे साथ, मैं देखता हूँ कि जब से मैं मधुबन में आया 45 साल पहले, तब से देखता हूँ कि अपनी शीलू बहन, हमारी शशि दीदी, ये रात दिन इतनी अथक सेवा करते हैं निश्चल भाव से, कोई इनको मान शान की कोई परवाह नहीं है। तो असल में तो ये बाबा के सम्माननीय रतन है, इनका तो जितना सम्मान किया जाए उतना कम है, जो जाता सम्मान करते हैं। मैंने याद किया है किंग्सवे कैंप को साधना बहन लेकर आई है और साथ में सुतीश दीदी को याद किया। यहाँ दिखाई तो नहीं पड़ रही सुतीश दीदी, दीदी बैठे आगे, एक बार अभिनंदन कर ले जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत स्वागत।
आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। दिल्ली दरबार के राजे महाराजे भी राजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। दिल्ली दरबार के राजे महाराजे भी राजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। कल राजधानी आज भी राजधानी है, होगी कल राजधानी फिर आज भी राजधानी है। बाबा मम्मा दादियों ने लिखी दिल्ली की कहानी है, होगी कल राजधानी फिर आज भी राजधानी है। बाबा मम्मा दादियों ने लिखी दिल्ली की कहानी है। बनाने परिस्थान फिर से उमंगों में सब नाचे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। दिल्ली दरबार के राजे महाराजे भी राजे हैं। आज तो आपके स्वागत में।
बहुत खुशी के पल हैं।
साधना दीन संग आए, किसने कैंप के राजे साधना दीदी संग आए। विकसित भारत का संकल्प विकासपुरी वाले लाए, किसने कैंप के राजे साधना दीदी संग आए, विकसित भारत का संकल्प विकास पूरी वाले लाए। सुतीश दीदी के संग में, सुतीश दीदी के संग में भाग के गीत गाते हैं। आज तो, आज तो, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। दिल्ली दरबार के राजे महाराजे भी राजे हैं। आज तो आपके स्वागत में बनिए यादगार भक्ति, तपस्या ऐसी करनी है। बनिए यादगार भक्ति, तपस्या ऐसी करनी है। वो 14 वर्ष की भक्ति 4 दिन में ही करनी है। बने ये यादगार भट्टी, तपस्या ऐसी करनी है। वो 14 वर्ष वाली 4 दिन में ही करनी है। सभी मधुबन निवासी हम, सभी मधुबन निवासी हम, दिलों से दुआ लुटाते हैं। आज तो, आज तो, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। दिल्ली दरबार के राजे महाराजे भी राजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं।
आदरणीय सतीश भाई जी, आप क्या आवाज, और आवाज के पहले भी एक 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 जो उनका शब्द है वो बहुत ही कमाल का। और कोई भी प्रोग्राम, बीके का हो नॉन बीके का प्रोग्राम हो, लेकिन आपके गीतों के बिना वो पूरा होता ही नहीं है। ये संगम युग का कितना बड़ा सौभाग्य है। तो सतीश भाई जी का, निरंजन भाई जी का और अल्दर भाई जी का, तीनों का हम जोर से एक बार। और इसके बाद वो छोटी सी कन्या, वो तो इंतजार कर रही है आप सभी का स्वागत करने के लिए। कनिष्का, कनिष्का बहन किंग्स वे से।
खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए।
खातिर हमारे दूर से खुशियां बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर,
खुशियां बिखेर दी है
बीज पाकर,
तुम्हें अपने बीज पाकर, अपने बीज पाकर।
देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका,
स्वागत है दिल से आपका, दशहरी पुला बुलाए, स्वागत है दिल से आपका, दशहरी पुला बुलाए।
खातिर हमारे दूर से शुभ होता जिनका नाम,
हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका नाम,
लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना,
उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना।
आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका,
स्वागत है दिल से आपका, दशहरी पुला बुलाए, स्वागत है दिल से आपका, दशहरी पुला बुलाए।
खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहाँ में है रब का रूप प्यारा,
मेहमान तो जहाँ में है रब का रूप प्यारा,
शिरकत से जिनकी होता अव्वल है काज सारा,
अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा।
शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए, स्वागत है दिल से आपका,
स्वागत है दिल से आपका।